सरदार अथ इसलिए एनम उसको अजामिल को मां मत अपनायता ले जाने का प्रयास करो कृता पहले किया हुआ अशेषा असीम अग्निष्कृतम उसके पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित या क्योंकि असौ उसने भगवत नाम भगवान का पवित्र नाम म्रियमाण मरते समय समग्रहित ठीक से उच्चारण किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। अनुवाद दोहराए। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पाप में जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यम दूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पापों के लिए नारकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी है। यद्यपि उसने अपने पुत्र को इशारा करने के लिए नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। भगवद गीता के 7 अध्याय श्लोक 28 में इसकी पुष्टि हुई है। एषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिन पुरुषों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्याय श्लोक 5 में कहा गया है, अंतकाले च मामेव अस्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशय। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही भगवत धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है।
ओम ज्ञानंदस्य ज्ञानंजनाश्लोक्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं सावितायमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वाहा। वन्देहं अद्वैतं सुवधूतं विघ्नसहितं श्रीराधा कृष्णपदान सहगनम्। हे कृष्ण वांचा कल्पा प्रभो नित्यानंद श्री अरविंदकरा हरे कृष्ण अथाई नाम अपनायता केता सेठ कंदेश कृता यदसो भगवान नाम नियमाना समग्रे। तो आप इस समय आजिम की कथा पढ़ रहे हो और इस अध्याय में आप पढ़ते हो किस प्रकार आजिमल का उद्धार हुआ विष्णु दूतों के द्वारा। भागवतम छठे स्कंद में इस कथा के द्वारा हमें भाई नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल आरंभ में परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा, इस समय आप छठा स्कंद पढ़ रहे हो पर पांचवें स्कंद में नरकों का वर्णन है, आप में से कितने भक्तों ने नरकों का वर्णन पढ़ा है? जब आप नरकों का वर्णन पढ़ोगे तब घबरा जाओगे और फिर आप पाप के कामों से बच भी सकते हो। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना किस प्रकार लोगों को सजा भुगतनी पड़ेगी अलग अलग नरक लोग में जाकर अलग अलग पाप के लिए, तो क्योंकि वो समाज के शुभचिंतक थे उन्होंने पूछा, ये बताइए कैसे लोग बच सकते हैं नरक में जाने से? ये है भक्त का भाव, दूसरों का उद्धार। इसलिए वैष्णव भक्त को कहा जाता है परा दुख दुखी। आप सब जो ग्रंथ के वितरण की सेवा में जुड़े हो, ये सेवा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज सुखी बने, और सुखी बनेगा केवल अगर वो भगवान की शिक्षा की शरण लेगा। और क्योंकि भक्तों की इच्छा है कि सबका उद्धार हो, इसलिए वो इस प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा ये प्रश्न और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने आगे कहा, उस प्रकार के पछतावा का क्या लाभ है जिसमें एक मिनट के लिए आप पछताते हो और अगले मिनट फिर पाप करते हो? जैसे हम मंदिर में आते हैं, तीर्थ के स्थान में जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं, सोचते हैं कि पाप धुल गए, पर फिर आकर फिर पाप करते हैं। और परीक्षित महाराज ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, उन्होंने कहा एक हाथी तालाब में स्नान करता है, स्नान करके जैसे ही निकलता है फिर वो मिट्टी में बैठ जाता है, फिर उसका शरीर फिर से गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस प्रकार के धर्म का क्या लाभ, आज आप पाप करो कल पछताओ, फिर पाप करो फिर पछताओ, फिर पाप करो फिर थोड़ी तपस्या करो फिर पाप करो। उन्होंने पूछा ये बताओ हृदय में जो पाप की इच्छा है इसको आप दूर कैसे करोगे? क्योंकि जब तक आप हृदय को शुद्ध नहीं बनाओगे, ये जो पाप की इच्छा है, पाप के प्रति जो आकर्षण है, उससे आप नहीं बच सकोगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा हमारे प्राचीन पुराणों में एक कथा है, और वो कथा कौन सी है? आजिमल की कथा। तो 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्राचीन पुराणों में जिसका अर्थ है कि घटना ये लीला जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, ये लीला बीती थी वो 6-7 हजार साल पूर्व। कितने? और हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद और महान आचार्यों और शुक्रदेव गोस्वामी की कृपा से आज भी हम इस दिव्य लीला की चर्चा कर सकते हैं। तो इन संक्षेप में क्या है लीला? आज ही मिलकर जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। माता पिता ने बचपन से ही उसे दिव्य ज्ञान दिया था, बचपन से ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, बचपन से ही ठाकुर सेवा भी करता था। उसकी अपनी मूर्तियां भी थी और ठाकुर जी की सेवा के लिए जंगल में गया था। क्या लाने के लिए? फूल और फल अपने भगवान के लिए। और फूल और फल लाने गया था और लौटते समय उसने एक वैश्य को देखा प्रेमी के साथ और इस घटना को हृदय में बिठा दिया, उसका स्मरण आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा उनका पतन आरंभ हो गया। पर लाभ एक था, ये था कि उनके सब 10 बेटों में उनके 10 बेटे हुए थे इस वैश्य पत्नी के द्वारा, जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जिसके प्रति उनका बड़ा गहरा आकर्षण था, नारायण के प्रति इतना गहरा आकर्षण था कि अगर वो एक पल के लिए भी उनकी नजरों से दूर होता था तो वो घबरा जाते थे। दिन में 50 बार नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे, कहते थे नारायण इधर बैठो, नारायण आओ, नारायण हंसो, नारायण भोजन खाओ, नारायण पानी पियो, नारायण विश्राम करो। इसलिए ये रिवाज है, था सारे विश्व के धर्मों में कि हम बच्चों को भगवान के नाम दें। जब आप बच्चों को भगवान के नाम देते हो तो अज्ञानता से आप भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हो। ये ना ही हिंदुओं में पर कृष्णों में भी रिवाज है, मुसलमानों में भी रिवाज है। और आजकल देखा जाता है कि बच्चों को आधुनिक मॉडर्न नाम चाहिए कोई, तो आज में ये क्योंकि हजारों दफा दिन में नारायण के नाम को पुकार रहे थे, विष्णु दूतों ने उनकी सुरक्षा की। मृत्यु के समय आज के श्लोक में क्या शिक्षा मिल रही है? मृत्यु के समय आजमी ने असहायक होकर बड़े जोर से नारायण के नाम को पुकारा। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी ने एक समय लॉस एंजलिस में आजमी की कथा पर लेक्चर दिए थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि जैसे पुलिस की गाड़ियां हर जगह घूमते रहती हैं, आपको पता बॉम्बे में भी घूमती हैं, तो पुलिस की गाड़ी हर जगह घूमते रहती है और किसी वक्त भी आप फोन करोगे पुलिस सहयोग चाहिए एकदम पहुंच जाती है। पिछले साल मैं बोइनी अमेरिका में था और कोई दुर्घटना हो गई, एक पागल व्यक्ति मंदिर में आ गया था, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, 30 सेकंड में पुलिस वहां पहुंच गई, 30 सेकंड में। तो हमने पूछा इतनी तेजी से कैसे पहुंच गए? पुलिस वहां हम पड़ोस में घूम रहे थे जब आपका फोन आया। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पुलिस की गाड़ियां घूमते रहती हैं और आप फोन करो तो एकदम पुलिस पहुंच जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के प्रतिनिधि विष्णु दूता घूमते रहते हैं सारे ब्रह्मांड में, घूमते रहते हैं और वो कहां पहुंचते हैं? जहां हरि के नाम का उच्चारण हो। जो घूमते रहते हैं वो देखते हैं हाँ यहाँ हरि नाम का उच्चारण हो रहा है तो वहां कर बैठ जाते हैं। एक समय भक्तों ने प्रभुपाद के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम की योजना की थी न्यूयॉर्क शहर में। ये हाय वो गोपी जी वेलकम श्रीचंद जी एंड गोपी चंद जी प्रकाश आई एम सॉरी हाय के। तो भक्तों ने न्यूयॉर्क शहर में एक बड़े कार्यक्रम की योजना की थी, काफी पब्लिसिटी, पर इतने लोग नहीं आए थे उस कथा में। तो भक्त जो थे बड़े दुखी थे। हमने प्रभुपाद जी को कहा इतने बड़े स्टेडियम में कार्यक्रम है, बहुत लोग आएंगे, पर बहुत कम लोग आए। तो भक्त दुखी थे, प्रभुपाद जी के पास गए, वे वेरी सॉरी आपको कष्ट दिया। प्रभुपाद ने कहा नो नथिंग वॉज लॉस्ट, कुछ नहीं खोया। तुम लोग कीर्तन कर रहे थे, राधा रानी वहां थी, कृष्ण भगवान थे, सारे देवता थे, वो सब बड़े खुश थे कि भक्त कीर्तन कर रहे हैं। तो जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो भगवान स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। तो हाजी मेल ने मृत्यु के समय असहायक होकर नारायण के नाम शब्द को पुकारा, इस भावना से नहीं पुकारा कि जो मैंने पाप किए हैं ये मिट जाए। उन्होंने क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण किया, क्या परिणाम हुआ? उसी समय भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां पहुंच गए, और भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहां पहुंचे और उन्होंने यामदूतों को रोक दिया। क्या करने से? आज मिल गई आत्मा को नरक में न जाने से। यामदूत क्यों पहुंचे वहां? आज मिल का पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि यामराज ने निर्णय किया अब आज मिल को नरक में लाना चाहिए सजा भोगने के लिए। हम सबके हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। कई बार जब हम पाप के कार्य में जुड़ते हैं हम सोचते नहीं कि हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। देवहूति ने भगवान कपिल देव से तीसरे स्कंद में पूछा ये कैसे निर्णय होता है कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा, और शुक्रदेव गोस्वामी देव कपिल देव भगवान ने कहा कर्म न देव नेत्र न जंतु देहो पपते। हम सबके हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, तारे, लाखों साक्षी हैं और परमात्मा। तो ये सब निर्णय करते हैं किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यामा जी ने देखा कि आजमिल का पाप का बोझ बहुत बढ़ गया था। तो यामराज ने क्या किया, तीन यामदूतों को भेजा आजमिल को नरक में लाने के लिए सजा भोगने के लिए। तीन क्यों? क्योंकि तीन साधन हैं जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं या जिनके द्वारा हम भगवान को भूलते हैं, मन, देह और वाणी। देह द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो, देह द्वारा आप इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ सकते हो, वाणी द्वारा आप भौतिक गुणगान कर सकते हो, वाणी द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो, मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर सकते हो और मन के द्वारा भौतिक विषयों का चिंतन कर सकते हो। तो यामराज जब इन यामदूतों को देखा, हाजे में घबरा गया। अगर आपने यामदूतों की तस्वीर देखी है, बड़ा भयंकर, और उनके शरीर को देखकर घबराकर उसने असहायक होकर क्या नारायण के नाम को पुकारा। जैसे ही नारायण के नाम को पुकारा, वहां भगवान विष्णु के प्रतिनिधि पहुंच गए, जिन्होंने यमदूतों को रोक दिया उन्हें नरक में जाने से। तो यहां विष्णु दूत यमदूतों को आदेश दे रहे हैं, स्टॉप। ये हमारे श्रीचंद हिंदुजा जी, बड़े पुराने भक्त, हरे कृष्णा। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया आजमिल को नरक में ले जाने से। तो आज के श्लोक के तात्पर्य में पहला महत्वपूर्ण विषय जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो विष्णु थे वो सुपीरियर अथॉरिटी थे। उन्होंने यमदूतों को आदेश दिया कि आजमिल आपके अधिकार में नहीं है। आगे जाकर आप पढ़ते हो कि जब विष्णु दूत, जब यामदूत गए यामराज जी के पास, या उन्होंने यामराज से पूछा, उन्होंने यामराज को कहा, ये पहली बार है कि आपने हमें भेजा किसी को सजा के लिए लाने के लिए और किसी और ने रोक दिया। क्या आपसे ऊंची भी कोई शक्ति है? तो यमराज ने क्या कहा, हां मेरे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भविष्य में उन व्यक्ति को मत छूना जिन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण किया है। तो इस कथा में अब बार बार लगभग हर श्लोक के तात्पर्य में हरि नाम की महिमा के विषय में सुनते हो। अब आज के श्लोक में, आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के दो प्रसिद्ध श्लोकों का उपयोग किया है ये स्थापित करने के लिए कि मृत्यु के समय हमारा मन ठीक स्थान में होना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अंते नारायण स्मृति। इस प्रकार की योजना बनाओ कि मृत्यु के समय आपका मन किस विषय का स्मरण करे। श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में आप महाराज भारत की कथा पढ़ते हो। भारत महाराज ने समाज के सारे सुखों को त्याग दिया था, पृथ्वी पर शासन किया, फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपी। वो जंगल में चले गए तपस्या उठाने के लिए। जंगल में गए पर वहां उन्होंने एक समय देखा एक शेर एक हिरनी का पीछा कर रहा था और वो हिरनी भाग रही थी अपने जान की सुरक्षा के लिए। और भागते भागते उसकी मृत्यु हो गई और जो बच्चा घर में था वो बाहर आ गया। महाराज परीक्षित भारत महाराज ने सोचा ये भगवान की इच्छा है शायद कि मैं इस पशु की देखभाल अपने बालक के समान करूं। और उनका बड़ा गहरा आकर्षण हो गया था किसके प्रति? हिरनी के प्रति। और एक दिन जब वो उस हिरनी को खोज रहे थे, खोजते खोजते उनका जीवन समाप्त हो गया। और क्योंकि उनका मन उस समय पशु पर था, क्या परिणाम हुआ? उन्हें उस पशु का जीवन ग्रहण करना पड़ा। तो प्रकृति के नियम बड़े कड़क हैं, इसमें किसी की छूट नहीं। भौतिक समाज में तो हमें आदत रहती है सौदा करने की। हाँ, आप व्यापार में जाते हो 10 रुपए देने, नहीं हाँ 5 रुपए। पर धर्म के परिणाम में कोई छूट नहीं। प्रकृति के नियम बड़े कष्ट हैं, चाहे आप न्यू भक्त हो या पुराने भक्त हो। अगर आप अपराध करते हो तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो शास्त्रों का निर्णय यह है कि हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि मृत्यु के समय आपका मन कहाँ हो, भगवान के चरण कमलों में। तो आप कहोगे आज हमें जो करना है करने दो, पर मृत्यु के समय हम बिना शंका के भगवान का स्मरण करेंगे, ये संभव है? नहीं। शास्त्रों के अनुसार और हम सबका अनुभव है, जिस कार्य में आप लीन रहोगे उसी प्रकार के कार्य में आपकी बुद्धि रहेगी कहां, मृत्यु के समय। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि आजीविल की मृत्यु का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि आजीविल ने नारायण शब्द को पुकारा मृत्यु के समय। और आजीविल ने नारायण शब्द को क्यों पुकारा? एक ये लाभ था, आजीविल का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, इसलिए उन्हें पूरी शिक्षा प्राप्त हुई थी बचपन से। दस काम में जरूर जुड़ गए थे, पर क्योंकि बचपन में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, उनके पास ये बुद्धि थी कि अगर मैंने बच्चों को नाम भी देना है तो बच्चों को भगवान का नाम देना चाहिए। भगवान का नाम देंगे तो जब आप भगवान के नामों को पुकारोगे, बच्चों को पुकारोगे, कम से कम कुछ लाभ तो आपको पहुंचेगा। ये बुद्धि उनके पास थी। और क्योंकि उन्होंने एक रूप से भगवान के नामों का उच्चारण नहीं रोका। आप कहोगे हम भी आज उनकी कथा की नकल करते हैं, हमें भी 10 साल हो गए भक्त के रूप ब्रह्मचारी आश्रम में, अभी थोड़ी देर के लिए हम भी छूट लेंगे और फिर हम मृत्यु के समय बिना शंका के आजीविल का नक्की नकल करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर इस प्रकार का भाव रखोगे तो वो सातवां नाम अपराध बन जाता है। क्या है सातवां नाम अपराध? हरि नाम के जप के बल पर पाप करना। ये सोचना कि अब तो मैं दीक्षित हूं, इतने सालों से हरि नाम का जाप कर रहा हूं, अगर कुछ अपराध करूंगा भी तो भगवान को माफ करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो दीक्षित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं। तो ये है हरि नाम के जाप के बल पर पाप करना। पर आज में इस भावना से नारायण के नाम का उच्चारण नहीं कर रहे थे। आजीविल के मन में यह भावना नहीं थी क्योंकि मैं ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया है, पाप करूंगा तो नारायण के उच्चारण के कारण मेरी सुरक्षा होगी, नहीं, ये उनके मन में भाव नहीं था। तो आजीविल ने मृत्यु के समय भगवान के नाम को पुकारा और इस प्रकार उनकी सुरक्षा हुई। तो अगर हमारा अभ्यास होगा भगवान के नामों के उच्चारण करने का तो ये संभव है कि मृत्यु के समय भी आप क्या भगवान के नामों का उच्चारण कर पाओगे। पर अगर हमारे मन में सदा यही भाव है इंद्रिय तृप्ति का, हमें मान लो क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक है और मृत्यु के समय भी यही सोच रहे हैं तो क्या होगा परिणाम? अगला जीवन क्रिकेट के मैदान में घास के रूप में होगा, तो आपके सिर पर लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो आप सारा क्रिकेट के साथ ही रहोगे। जहां मन होगा मृत्यु के समय, मान लो आपका मन है मैंने इतनी बड़ी कोठी बनाई जूस की में यहां रहने के लिए केवल 25 साल मिले, कम से कम 50 से मिलने चाहिए थे। ये सोचते सोचते अगर आप शरीर त्याग हो तो क्या परिणाम होगा। उसी घर में जन्म जन्म पर माने के रूप में नहीं, किसी नौ कीड़े के रूप में। तो यहां आपका मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं गीता में 8वें अध्याय में अंते काले च मम एव, अगर मृत्यु के समय का मन मेरे तरफ हो तो मेरे धाम में आओगे। तो अगर हम नियमित रूप से 16 माला का जाप करें, अच्छी साधना रखें, शास्त्रों का स्मरण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो बिना शंका के मृत्यु के समय में आपका मन ठीक स्थान में होगा। तो ये आवश्यक है कि आपका जो अभ्यास हो, हमें वैदिक भक्ति का अभ्यास रखना चाहिए, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस भगवद्गीता इस तात्व में प्रभुपाद जी 7वें अध्याय के एक प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, ये सब अनंत गतम पापम, जिन्होंने पुण्य भाव से पूर्व जन्म में सेवा की है, जिनके पाप मिट गए हैं, वो दृढ़ होकर मेरी सेवा में जुड़ते हैं। रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक है श्री उपदेश अमृत, जिसमें रूप गोस्वामी समझाते हैं क्या कार्य अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। जैसे साधारण जीवन में हम सदा ये जानना चाहते हैं क्या अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए क्या प्रतिकूल है, तो इस प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं क्या अनुकूल है भक्ति के लिए और क्या प्रतिकूल है। तो इस विषय में वो क्या कहते हैं, अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो क्या क्या गुण होने चाहिए, उत्साह निश्चय ध्यान तत्त्व कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सदैव रहते सदैव भक्ति प्रसिद्धि। तो दृढ़ होकर हमें इस सेवा में जुड़ना चाहिए विद डिटर्मिनेशन। और प्रभुपाद जी इस विषय में गीता में एक उदाहरण देते हैं कि एक समय एक पक्षी के बच्चों को सागर ने चुरा लिया था। पक्षी ने कहा मेरे बच्चों को लुटा दो। सागर ने कहा हंसते हुए नहीं, तो पक्षी ने कहा मैं फिर तुम्हें सुखा दूंगी और ले लूंगी अपने बच्चों को वापस। सागर हंसने लगा, आखिर पक्षी के मुंह में कितना जल आता है, मुझको एक छोटे चम्मच का। तो सागर हंसने लगा तुम मुझे सुखाओगे, मुझे सुखाना आरंभ किया। ये सूचना गरुड़ा तक पहुंच गई। गरुड़ा ने आके सागर को कहा पक बच्चे इनके वापस करो नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण का उपयोग करते हैं भगवद गीता में ये स्थापित करने के लिए कि अगर हम भक्ति में सफलता चाहते हैं तो हमें दृढ़ होकर विद डिटर्मिनेशन भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए, चाहे जो भी आपकी सेवा हो। जैसे इस समय सारे भक्त जुड़े हैं ग्रंथों के वितरण की सेवा में, क्यों? क्योंकि जैसे हमने आनंद में कहा था भक्तों का भाव यह रहता है कि पूरा समाज सुखी बने, पर वो जानते हैं कि असली सुख चाहिए तो हमें अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा, अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध बनाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हमें भक्ति की विधियों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्त जानते हैं, इसलिए भक्त प्रयास करते हैं लोगों को इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बड़ी परेशानियों को उठाया इन ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने क्यों इन ग्रंथों का अनुवाद किया, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग सुखी बने। व्यासदेव जी और हमारे आचार्यों ने हमें ये सब उपदेश क्यों दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मानव समाज सुखी बने। परस्ती सुख प्राप्त होगा कैसे? भगवान के ज्ञान के द्वारा। तो इन ग्रंथों का जो प्रभाव है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में एक भक्त के घर में था, तो मैंने उनसे पूछा भक्त कैसे बनोगे, तो उसने कहा एक मेरे मित्र थे जो मुझे बिजनेस की किताबें देते थे हर महीने। ये जो दूसरा व्यक्ति था ये व्यापारी था जो कि बिजनेस की किताबें अलग अलग व्यापारियों को देता था, पर उनका अच्छा संबंध था दिल्ली के मंदिर के साथ। तो एक बार उसने किताब बिजनेस किताबों के साथ एक और प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक दे दी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। और अगले हफ्ते जब ये व्यक्ति आया बिजनेस किताब के साथ भगवद गीता की कॉपी भी दे दी। ये जो व्यक्ति था खुद तो इतना अच्छा भक्त नहीं बना हुआ, काफी लोगों को भक्त बनाया। तो इस सज्जन ने परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर पढ़ना शुरू किया, जिज्ञासा बढ़ी, और फिर एक दो हफ्ते बाद किसी ने उसी व्यक्ति ने भगवद गीता दे दी। फिर उन्होंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, फिर उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, बड़ा बड़े अच्छे भक्त बन गए। तो इनका परिचय कैसे हुआ? एक पुस्तक के माध्यम से। तो इस प्रकार हजारों हजारों उदाहरण हैं सारे विश्व में कि लोगों का परिचय हुआ एक ग्रंथ के द्वारा। कई बार भक्त सोचते हैं हम जाके जबानी प्रचार करेंगे ग्रंथों की क्या आवश्यकता, हम जबानी कह देंगे हरे कृष्णा बोलो तुम यह देह नहीं हो आत्मा हो। तो प्रभुपाद जी कहते थे इस विषय पर आप कहोगे लोग सुनेंगे एक दो मिनट के लिए और भूल जाएंगे, पर एक बार उन्हें ग्रंथ दोगे तो ग्रंथों को पढ़ेंगे और फिर से पढ़ेंगे। एक सज्जन थे जिन्होंने एक भगवद गीता खरीदी थी 20 साल पहले, और 20 सालों के लिए उन्होंने कभी किताब खोली भी नहीं, किताब थी घर में रख दिया 20 साल। 20 साल बाद एक दिन कुछ दुर्घटना हुई जिसके कारण दुखी होकर उनकी इच्छा थी कोई आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़े। जैसे भगवान गीता में कहते हैं चार परिस्थिति में लोग मेरे शरण में आते हैं, कौन? चतुर्विधा वजानते माम, जो दुखी है, रोगी, पीड़ित, जिज्ञासु, ज्ञानी, और जैसे धनंजय। जब कठिन परिस्थिति होती है हमारा सौभाग्य है हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं। तो 20 साल बाद इस व्यक्ति ने गीता पढ़ना शुरू किया, एक दफा पढ़ी, दूसरी दफा, और फिर जाप करना शुरू कर दिया और अच्छे भक्त बन गए। और 20 साल किसी ने गीता वो खोली भी नहीं। तो जब आप प्रचार करने जाते हो कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है कोई पढ़ेगा नहीं, कोई देखेगा, आपको कुछ अंदाजा नहीं कब लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। और कई बार एक व्यक्ति लेगा और दूसरा व्यक्ति पढ़कर इसका लाभ उठाएगा। तो हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है, और इसलिए हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने भी इस सेवा पर बल दिया। भक्ति सिद्धांत जी एक समय प्रभुपाद जी के साथ थे राधा कुंड में, प्रभुपाद जी उनके साथ थे। भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो इन ग्रंथों को प्रकाशित करना और क्या वितरण करना। आप कहोगे हमारे में तो कोई योग्यता है ही नहीं, हम निकम्मे हैं, हर भक्त यही सोचता है कि अच्छा भाव है। योग्यता नहीं भी है, भगवान आपको योग्यता देंगे जब वो देखेंगे क्या प्रयास कर रहे हो। जैसे यशोदा माता ने प्रयास किया भगवान को रस्सियों के साथ बांधने के लिए, पहले एक ही रस्सी ली। यशोदा माता के घर में 9 लाख गायें थी, 9 लाख, जिनमें 9 गायें इतनी प्रसिद्ध थी कि उनसे सुगंधित दूध निकलता था, अलग अलग सुगंध का। जैसे आप कोकोला आइसक्रीम में जाते हो, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मिलती है आपको तो अलग अलग फ्लेवर का दूध निकलता था। तो जब यशोदा माता ने पहले तो एक रस्सी के साथ प्रयास किया, फिर 2, 3, 4, 5 सब रस्सियों को जोड़ दिया। जब भी ये रस्सी सब रस्सियों को जोड़कर छोटा पड़ रहा था, ये नहीं कि भगवान अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे, जैसे अपने आप को ज्यादा मोटा बनाते जा रहे थे कि रस्सी से बांध नहीं सके। भगवान होते ही थे, तो जब भी सब रस्सियों के साथ वो बांध नहीं पाए। फिर दूसरे गोपियों ने अपने घरों से सब रस्सियां ला के दी, सबको जोड़कर फिर भी बांध नहीं पाए। पर भगवान ने देखा मेरी मां इतना प्रयास कर रही है, तो उन्होंने कहा अब मुझे बांधने दो। तो भगवान जब देखते हैं हम प्रयास कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए, महान आचार्यों की खुशी के लिए, प्रभुपाद जी की खुशी के लिए हम इस प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, तो भगवान हमें योग्यता देते हैं, बुद्धि देते हैं। और जिस व्यक्ति से आप चर्चा कर रहे हो उसे बुद्धि देते हैं कि वो आपका साथ रहे। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, ये समाज के उद्धार के लिए है। दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर वर्क। तो आप सब जो इस सेवा में जुड़े हो, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप सबसे ऊंची सेवा में जुड़ रहे हो। अगर आज आप देख रहे हो कि इस कौन संस्था के भक्त बढ़ रहे हैं, उनका मूल कारण यह है कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो ये ग्रंथों के वितरण की सेवा जो है पूरे समाज के सुधार के लिए है, और ये सेवा केवल अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही ये मौका मिल रहा है। तो लोग आजमल की कथा पढ़ेंगे, आजमल की कथा सुनेंगे और हरि नाम की महिमा का ज्ञान बढ़ेगा। तो हमें बड़े ध्यान से वैदिक भक्ति का पालन करना चाहिए। वैदिक भक्ति का अर्थ है नियमों का पालन, और जब आप नियमों का पालन करोगे तो चेत दर्पण मांझना, जैसे हृदय की मैल दूर होगी, आप भजन क्रिया का पालन करोगे तो फिर हृदय में क्या आएगी, निष्ठा। ये निष्ठा आवश्यक है अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो। तो भजन क्रिया के पालन से ही इन निष्ठा या दृढ़ होने का भाव प्राप्त हो सकता है। तो आज के श्लोक में ये विष्णुदूत यामदूत को रोक रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोको रोको रोको, तुम आज मिल को की आत्मा को नरक में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति नारायण के नामों का उच्चारण कर रहा था दिन रात, और इसलिए हम आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए। तो जो व्यक्ति हरि के नाम का उच्चारण करता है, विष्णुदूत उनकी सुरक्षा करते हैं और उनको रोक, यामदूतों को रोक देते हैं उन्हें छूने से। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि जो हरि नाम करते हैं उनका हिसाब किताब भगवान स्वयं रखते हैं, और जो हरि नाम को नहीं अपनाते उनका हिसाब किताब कौन रखते हैं, याम रखते हैं। तो हमें केवल हरि नाम का उच्चारण नहीं करना, हरि नाम का उच्चारण करना है बड़े ध्यान के साथ, अपराधों से रहित, फिर भगवान आपका हिसाब किताब रखेंगे। तो अगर हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं साथ में अपराध भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं हरि नाम के उच्चारण से पापों के परिणाम से हम बचेंगे, तो फिर उस स्थिति में यामराज जी आपका हिसाब रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका हिसाब रखें तो प्रयास करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपका हिसाब रखें तो आपको प्रयास करना चाहिए। ध्यान पूर्वक जाप अपराधन से रहे, चार नियमों का पालन, फिर भगवान देखेंगे, कहेंगे हाँ ये व्यक्ति सचमुच मुझे पाना चाहता है, ये व्यक्ति मेरे शरणागत होना चाहता है, ये व्यक्ति तपस्या का पालन कर रहा है, तो इसकी सुरक्षा मैं करूंगा। और इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुम सारे विश्व को सूचना दो। क्या क्या सूचना? क्या कहते अपराध जाने ही न हमें भक्त परमेश्वर, मेरा भक्त जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो आजम की कथा सुनने से हिना में हमारी श्रद्धा बढ़ती है और हमें यही भाव रखना चाहिए कि हम दिन रात हरिनाम को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।